ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦ ਨਾਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰਸਾਂ ਚੱਠੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਰਹਾਓ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚ ਧਨ ਬਾਧੋ। ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਕੀ ਕਾਲੀ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਹੰਸ ਹਰ ਸੰਤ ਚਲੈ ਹਰ ਨਾਲੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇ ਲਾਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਲੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਹਰ ਮੇਲੋ। ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗਰਾਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਲੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਹਰ ਮੇਲੋ। ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗਰਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ, ਹਰ ਨਾਉ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਣਸ ਸੰਦੀ ਆਸ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ, ਹਰ ਨਾਉ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਣਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਦੂਏ ਭਾਏ ਵਿਗੁੱਛੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਈ ਇਸ ਜਮਕੀ ਫਾਸ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ, सो धर गए होए खलास, कर कृपा प्रभ आपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग साध संग जी, अपने मन दिया बिरतियाँ एकागर करो जी, कि गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरु। अज संगरांद जान के असी सब मिल बैठे हैं, पर अज आषाढ़ दी संगरांद है। आषाढ़ दा महीना, हाड़ दे महीने दी संगरांद है। हाड़ जिहड़ा कि तपिश दा भरिया होया है। हाड़ देसी महीने विच चौथा महीना है, और रुत्तां विचों ग्रीखम ऋतु दा दूसरा महीना है, और तपिश दा भरिया होया है। बारह माह जिहड़ी है, इन्हां महीनियां नूं डिस्क्राइब करन वास्ते ही है। पर पहले है संगरांद, इस दिन सूरज अपनी रास बदलता है। रास बदलता है तो सो मौसम भी बदलता है उस दिन नाल। सो जरूर नोट करना, जिस दिन संगरांद होएगी मौसम अलग होएगा। आज मौसम ज़्यादा गर्म है, हालांकि ग्रीखम ऋतु विच गर्मी दी ऋतु विच दो महीने हैं, जेठ ते हाड़। लेकिन जेठ विच घट गर्मी है, आषाढ़ विच ज़्यादा फ्लैश स्नो। सो इस दिन सूरज अपनी रास्ता बदलता है, रास बदलता है, और यह संगरांद मौसम विच बदलाव। जिस जगह ते संगरांद का वर्णन होएगा, उसे बारह माह का वर्णन जरूर होएगा। दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। बारह माह की है, बारह माह है जिसे विच के ओ काव्य, लोक प्रचलित काव्य, जिस बारह महीनिया का वर्णन है। बारह देसी महीने, जो चेत तो शुरू होता है, ना कि जनवरी वाला। ये महीना जड़ा है, या बिक्रमी महीना, चेत तो शुरू होता है। चेत वैसाख एक ऋतु है, तो जब जेठ त्योहार ग्रीखम ऋतु आ जाती है। सो बारह माह काव्य जड़ा है, इसकी रचना हुई है खट ऋतु वर्णन तो, खट छे, खट ऋतु वर्णन। जैसा बारह महीने हैं, छे ऋतु हैं, हर ऋतु के दो महीने हैं। सो खट ऋतु वर्णन तो बारह माह काव्य अगे बढ़े है, क्योंकि खट ऋतु मतलब छे, बारह बारह, उसी ऋतु नु डबल वक्त विच डिस्क्राइब करने से ज़्यादा वक्त मिल जाता है, ज़्यादा जगह मिल जाती है। सब तो पहला जेड़ा काव्य खट ऋतु का है, वह है कवि कालिदास का ऋतु संहार, जो कि लोक प्रचलित भी है, संसार विच भी पॉपुलर है। उसके बाद होर आए, फिर आया हिंदी का आया, जिस विच के पद्मावत, पद्मावती का वर्णन, पद्मावत उसका वर्णन है मलक मोहम्मद जायसी, हिंदू हिंदी विच उसने वर्णन किया है। ये हैं खट ऋतु के वर्णन। लेकिन जो बारह पहला बारह माह जड़ा है, अकबर का दरबारी कवि गंग भट्ट या गंगादास उसका लिखा हुआ है, हिंदी विच लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत की छाया है इस विच। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀਰ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹਨ, ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦਾ ਬੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਇਕਾ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਇਕਾ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਲਿਖੇ, ਸੋ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮਹਾਨਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਨਾਇਕ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੁਐਸ਼ ਭਾਵ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਧ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਸਤਵਰੇਸ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਆ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਰੱਬ ਮੰਨ ਗਿਆ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਮ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਭ, ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਜਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਸਤਵਰੇਜ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 14 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਖਰੀ ਹੈ ਕੌਨਕਲੂਜਨ, ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਚੇਤ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਤ ਕ੍ਰਮ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਵੀ ਚੇਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज से जो सार है वो फगन के महीने के पढ़िया जाएगा कि फगन आखिरी महीना है। बाकी के जोड़े महीने हैं वो जरा महीने नाल जरा कनैक्टिड शब्द है वो ही पढ़िया जाएगा। सो मैं सिर्फ आषाढ़ का शब्द पढ़िया इस दफा। ये मर्यादावान हैं इन्हों कबूल करना पैदा और इस्तेमाल करना पैदा और खुशी नाल इसमें एक्सेप्ट करो। सो 12 माह विच नायका असी लोग जीव स्त्रियां असी प्रभु नूं मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया की जी ज्ञानहीन अज्ञान पूजा है ना, ज्ञानहीन अज्ञान पूजा, इसका कारण यह है कि मनुख जरा है बाहर मुखी है। मनुख नू सूरज नज़र आता है, चंद्रमा तारे नज़र आते हैं, दरिया नज़र आते हैं, दरिया के किनारे तीर्थ स्थान नज़र आते हैं। तो वह की करता है, तीर्थों की यात्रा करता है, जल तारे करता है, होर पाठ पूजा करता है, अपने तन नू मल मल के धोता है। लेकिन अंदर जो मन है वह गंदा भरिया ही रह जाता है, मन को साफ करने की कोशिश नहीं करता। गल सिर्फ ये है गुरबाणी का मकसद ये है कि अपने मन को साफ करो। गुरबाणी बाहरी चीज़ सिर्फ उदाहरण देने वास्ते करती है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सू समझाने वास्ते 12 माह रचिया जो असी लोग करते हैं जिस तरह साढ़े कर्म हैं उसके मुताबिक बाणी रच के समझाने की कोशिश की है कि यह मनुख ये महीने बदल रहे हैं, रुत्तां बदल रही हैं, पहले बसंत जी तो हम ग्रीष्म ऋतु आ गई है, आज सावन भादो आ जाएगा, होर ऋतुआं आ जाएंगियां, लेकिन इन ऋतुओं का तेरे मन पर असर नहीं होना चाहिए। गर्मी की ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, अपने तन को संभालने के वास्ते असं पखे इस्तेमाल करते हैं, कूलर एयर कंडीशनिंग यूनिट, ठंडे ठंडे पानी नहा लिया पहाड़ पर चले गए, लेकिन मन को शांत किस तरह करोगे? मन को शांत करने वास्ते नाम, आतिश दुनिया खंडक नाम खुदा है। कल ताथी ठंडा गुरसूर नाम है जिहड़ा के मन नू ठीक करता है, मन की मैल नू धोंदे वास्ते नाम का इस्तेमाल किया जाता है। साढ़े दो हिस्से हैं, एक है सूक्ष्म जी कि आत्मा है, उसका कनैक्शन है परमात्मा, परमात्मा का कनैक्शन आत्मा नाल है। जब तक प्रभु अपनी अंश साढ़े बिच नहीं पाता असं पैदा नहीं होंगे, पर सब दे प्रभु की अंश है। फिर है स्थूल जो कि साढ़े माता पिता के देन है, जो 5 तत्वों का बनया हुआ है, और जब तक मृत्यु होती है आत्मा दूर चली जाती है जिसे परमात्मा ने भेजना होता है। उसमें सारे हर एक आत्मा परमात्मा लीन नहीं हो जाती, रस्ते अलग हो जाते हैं अपने कर्मों के कारण। जो स्थूल पीछे रह जाता है उसमें फिर अग्नि पेटा कर दिया जाता है या जल प्रवाह कर दो या दबा दो, जो भी कर रहे हो, जो भी साढ़े कस्टम्स हैं। तो स्थूल पीछे रह जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म है वह है मन, उसका कनैक्शन है परमात्मा नाल। असी लोग दुनिया भर दिया गल करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पावांगे, अच्छे खाने खावांगे, लेकिन नाम कर जपांगे। कभी तकलीफ हो तो गुरुद्वारे चले जावांगे, मंदिर मस्जिद चले जावांगे, लेकिन अगर तकलीफ नहीं है तो घर बैठे हैं मज़े ले रहे हैं, उसमें नाम भुल जाता है। लेकिन अगर उस वक्त भी नाम नु जपया जाए तो फिर दुख आएगा ही नहीं। सो मन नु कंट्रोल करने वास्ते नाम है। इस ग्रीक मृत्यु का वर्णन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने वारा तो बुधीक भी लिखे। गुरु नानक साहब जो कि प्रकृति के प्रेमी सन, वो जा रहे हैं कि देखते हैं कि एक बहुत अच्छा बाग है, हरे हरे लॉन है, उस एक तालाब है, तालाब विच कमल के फुल उगे हुए हैं, कि मछियां कलोल कर रही हैं, जिवें कहते हैं मछुआरा नहीं आएगा, मछुआरे डर के बगैर कलोल कर रही हैं, कमल के फुल हैं, कमल के फुल की मकरंद है तो भंवरे भी हैं। गुरु साहब बैठे उस जगह से, अपने मन विच एक तजर्बा लिख लिया, सुनहरी अखरां विच कितना खूबसूरत जगह है, उठ के चले गए। कुछ वक्त के बाद वापस आए तो की देखते हैं हरियावल खत्म हो चुकी है, सारा लॉन सूख चुका है, पेड़ भी सूख चुके हैं, कमल के फूल खत्म, मच्छियां मर रही हैं, और बदबोई पदो है कि मच्छी मरी हुई है। तो साहब बड़े परेशान हैं, पूछते हैं तालाब ने कि तेरा कारण की है। तालाब कहना गल ये है कि मैं अपने में कुछ भी नहीं हाँ, मेरा कनैक्शन सी एक दरिया के नाल, जितों के ताज़ा पानी आता सी, कमल के लोग दसन मच्छियां भी सन, सुगंधी सी, उस पानी नाल हरे हरे लॉन भी सन, तो पेड़ भी हरे सन। लेकिन मैं पता लग गया कि मैं खुद कुछ नहीं हैगा, क्योंकि मेरे भी जो दरिया के विच वक्त की गर्दिश के नाल तो रेत पै गई है, उसे एक बन बनता गया, पानी आना बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया तो जरा स्टेल वाटर है, जरा रुके हुआ पानी है, फिर तो गंदी है, फिर मच्छियाँ मरण गया, फूल भी मरण गए। ये मेरा हाल है। इतों तथ्य यह निकलता है, गुरु महाराज कह रहे हैं कि मनुख जब तू पैदा होया सी ना, तन मैं सब गुण दिते सन, तेरे विच सत सी, संतोख, दया, धर्म, परोपकार, सब कुछ है। हुण की हो गया तन, तू तो हरा भरिया सी, तेरा मन ते तन सड़ क्यों गया है? तो मनुख जवाब देना है कि गल ये है कि वो जो चंगे गुण सन ना, वो विकारी गुणा नाल रिप्लेस हो गए, ना मेरे सत है, ना संतोख है, ना दया, ना धर्म, ईरखा ईरखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, वासना, द्वेष भाव, जो कह लो दुनिया भर दे असुरी गुण या राक्षसा वाले गुण। असी कह देने कि हर नाकश पैदा होया, रावण पैदा होया, ये राक्षस है, राक्षस हर युग विच है। अगर तुहाडे विच दैवी गुण है, तुसीं देवते हो, अगर असुरी गुण पालते हो, विकार पालते हो, तुसीं राक्षस हो। फिर असीं राक्षस हाँ अगर असीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, वासना, द्वेष भाव, तो सवेरे उठ के सोचते हैं आज किसका पत्ता कटना है। लोग करते हैं इस तरह, और वो करते हैं और खुशी महसूस करते हैं। की कहोगे, एक मनुख है कि राक्षस है? राक्षस जिंदा जांदा राक्षस है। लेकिन जेड़े मनुख सत, संतोख, दया, धर्म अपनाते हैं, परोपकार अपनाते हैं, अहिंसा अपनाते हैं, खिमा अपनाते हैं, तो वो देवते हैं। देवते कोई नहीं कि ताज पोशी, ताज लगे देवत्या जिसे तो राक्षसों में सिंह उगे हुए, नो, साढ़े बिच ही सब कुछ है। सो गुरु महाराज का कहना यह है कि मनुख तेन सब गुण दिते सी, वो रिप्लेस करके तू वक्त नाल असली गुण अपने मन च पा ले, इसलिए तू काला हो गया, इसलिए असी काले हो गए। कहीं घर जा के सोचना कि सारी मन की हालत की है। अभी कितनी दफ़ा याद करते हैं प्रभु, इसीलिए गुरु तारण की प्रथा शुरू हुई कि गुरु जो है तो रास्ता दिखाएगा और जेड़ा गुरु सही रास्ता नहीं दिखाता वो गुरु नहीं है। सो जेड़ा मनुख प्रभु के नाल अपना रिश्ता बना के रखता है वो सदा हरा भरा रहेगा। इस मौसम दे विच बेनतहा गर्मी है, तपी हुई है, आकाश तो थोड़ा पाताल भी तपिया है, पृथ्वी भी तपी हुई है, असी भी तंग हाँ तो पशु पक्षी भी तंग हैं, पानी के स्रोत सुखते जा रहे हैं, लेकिन इस मौसम दे विच भी अगर एक पेड़ है जरा कि अपनी जड़ ना लगे आया है, बेशक आंधी तूफान आएगी, चलती है ना आजकल दिनों में लू चलती है, तूफान आंधियाँ आंधी हैं, वो पेड़ हिलेगा लेकिन वो जड़ों निकलेगा नहीं, उसके बाद भी कायम रहेगा। लेकिन अगर उसी पेड़ की एक शाखा नु कट दिता जाए उसे जिन्ना मर्जी पानी पाए जाओ उसने मरना ही मरना है। दरिया हन चलते जा रहे हैं, उछाले खांदियाँ लहरा तो कुछ पानी बाहर गिरता है, वो छोटे छोटे टिब्बे बन जाते हैं, टोए बन जाते हैं, और टोया का पानी तरख जाता है, वो पानी जानवर भी नहीं पीते। मनुख की हालत ऐसी ही है, वो मनुख जेड़ा प्रभु को टूट गया है, वो तरखे हुए पानी वर्गा है, सुखी हुई शाखा दे वर्गा है। एक फुल लगा है शाखा के नाल, जितने मर्जी आदि तूफान आएगी उसकी सुगंध उसकी खूबसूरती कायम रहेगी, पर एक बार तोड़ दो तो दो घंटिया सुगंध भी खत्म तो खूबसूरती भी खत्म। सो इस सानू सबक है कि असी प्रभु नाल जुड़ के रहना है, तद ही साड़ी सत्ता कायम रह सकती है। सो असी आने इस शब्द ते आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाम न जिन्ना पास, आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाम न जिन्ना पास। हर नाम है पति, हरि पति, जिन्हां कोलों तुहाडे मन दे विच प्रभु का नाम नहीं वसता उन्हां नूं ही ये तपश लग सकती है। जेड़े जिन्होंने नाम नूं अंदर बसाया होया है, जिन्ना मर्जी हो जाए, जिन्हें मर्जी विकार आसपास कर देते जान, और आंच नहीं आ सकती कि प्रहलाद जल गया सी, जब प्रहलाद के अत्याचार हो रहे सन तो उसे भुआ ने कहा ठीक है मेरे को एक शॉल है ये ब्रह्मा ने दी है मैनू, और क्या है कि मैं ओढ़ लवा तो अग भी नहीं सड़ांगी, ओढ़ के बैठ गई, प्रहलाद ने अपने गोदी से ले लिया। लेकिन प्रहलाद तो भक्त से प्रभु ने रक्षा करनी सी, हवा का चौका आया तो वही शॉल जड़ी सी उड़ के प्रहलाद के आस पास आ गई, वो जले है नहीं। इस तरह प्रभु इसका नाम एक कवच के रूप में सजीव रक्षा करता है। कीर्तन सवेला असं रात में सवेले का पाठ कर रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल कवच है साडे च कि पाठ करेंगे साढ़े आस पास कोई गलत काम नहीं होएगा। एक साखी है इस मामले अजकल तो आन जाने तरीके बहुत हैं, लेकिन पहले लोग पैदल आते सी जंगलों में, अफगानिस्तान तो आ रहा है एक बंदा दसवंध लैके आ रहा है, अमृतसर जा रहा है, उसने रात को अपनी जी गठड़ी सी अपने सिर थले रखता सी, कीर्तन सवेरे का पाठ करता सी, सो जाता सी, अगले दिन सवेरे फिर शुरू कर देता सी। एक दिन अधी रात को जाग खुली तो की देखता है कि उसके आस पास एक बड़ा पिंजरा है, और पिंजरा दरवाज़ा खुला है उस दरवाजे में एक चोर अंदर आ चुका है और गठरी चुक रहे हो। वो जाग गया, उसने गठरी बचा ली। चोर कहना एक गल दस, तुम्हें दरवाजा बंद करना किसने भूल गया? अज रोज एक बजे जरा जरा पिंजरा में देखना थे आस पास, दरवाजा बंद तो अज खुला क्यों है? दरअसल पाठ करते करते सो गया, कीर्तन स्वर का पाठ करते करते सो गया। जब तो पाठ पूरा किया तो दरवाजा बंद हो गया। हूँ वो पिंजरे के बीच वह भी है, चोर भी है। सो एक किस्म का साइकोलॉजिकल मैसेज है सानू कि अगर असी पाठ करांगे तो प्रभु सानू याद करेगा, इसलिए सोहरे का पाठ किया जाता है। आसार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास, हर नाव हरी पति परमेश्वर का नाम साढ़े अंदर नहीं है। जग जीवन पुरख त्याग के मानस संति आस, जगजीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस के जरा जगजीवन पुरख है, जो सत्ता जिस हाथ में है, प्रभु परमेश्वर जो है, उसनों भूल के असी गलत काम करते हैं, असी दर दर पटकते हैं, कुत्ते दी नहीं आई, दर दर पकड़ते हैं, सूर दी नहीं आई, लेकिन अपने पति परमेश्वर नूं याद नहीं करते। जीवन पुरख नूं त्याग के असी प्रभु नूं भुल के, इस करके प्रभु साडे कोलों दूर है। जगजीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस, दूसरे मनुखां कोलों असी आस रखते हैं कि साडी रक्षा हो जाएगी, साडा राजा, साडा जगीरदार इसी आस रखते हैं कि उन्हें बचा लेगा, लेकिन जब मौत आएगी कोई नहीं बचाएगा। मौत वेल प्रभु ही है जो बचाएगा, वो ही जमदूत दूर भेजेगा। सो जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस, दोए पाए वे गुच्छिए कल पई सुजम की भास, दोए पाए वे गुच्छिए फिर किसी होर ते कर जाना, दोए पाए ये है माया, कि माया ते असी डिपेंड करके, सब माया ही है साढ़े आस पास, उसनों असच समझ के प्रभु नूं भुल के असी की कर रहे हैं कि अंत विच जम दी फासा साढ़े गले च पेगी। ऐसा माया ही है, रिश्तेदार भी माया हैं, साढ़े घर भी माया हैं, साड़ी कार भी माया है, इस तरीके हो जिनी साड़ी प्रॉपर्टी है माया है, लेकिन अगर वो ही कार सानू गुरुद्वारे लेके आती है वो माया नहीं है। वो रिश्तेदार सानू रोकते नहीं ऐसी पाठ करिए वो माया नहीं है, लेकिन माया वो है ये सानू प्रभु तो दूर करती है। दोए पाए भी गुच्छी है गल फई सु जम के फास, फिर क्यों होएगा? फिर जमती फास गले च पै जाती है। जिहा बीजे सो लुणे मथे जो लिख्यास, जो इंसान बीजता है वो ही कटता है। अगर किक्कर बीजेगा तो दाखा नहीं मिलनगियाँ उसमें। इस तो भाव ये है कि जी गलत काम करांगे तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अच्छा रिजल्ट आएगा साढ़े को, क्योंकि जो कर्म असी कर रहे हैं, असी कर्म कर रहे हैं ना, साढ़े कर्म बन जाते हैं, वो बच्चे से लिखे जाते हैं। जो जो कर्म असी कर रहे हैं असी सोच समझ के करने हैं। जैसा बीजे सो लोने, जिस तरह कर्म करोगे उस तरह का फल मिलेगा तुम्हें। मत्थे जो लिख्या, क्योंकि मत्थे से लिखा जाता है, रहन विहानी पछताणी उछल ली गई निराश, रहन विहानी और रात बीत गई अर्थात जिंदगी बीत गई, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਜਦ ਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼। ਸੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਛਤਾ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ ਸੋ ਦਰਗੇ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਦਰਗੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਨਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਧ ਬਿੰਦੂ ਜਾਖੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗਾ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗਾ, ਆਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਤਪਿਸ਼ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਇੰਤਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਅੱਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤਹਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ, ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੋ, ਅਗਰ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੇਤ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਬੀਤੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੁਖੀ ਬੀਤੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਵਿ ਹੈ ਬਾਰਾਂਮਾਂਹ, ਇਸਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਖੰਡ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਸਾਓ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਇਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਸਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।